blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Jeniha Kasaya Pahuda. Mane Anaya Mujjalam Anantatham. Gahahi Vivariyam Tam. गुणहर भडारयम वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आज से अभी यहाँ अपनी दूसरी पुस्तक चल रही है और उसमें पयड़ी विहत्ति नाम का द्वितीय अर्थाधिकार यहाँ चलेगा। प्रस्तावना देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी ने वो पढ़ी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं कि पढ़ ले, नहीं तो पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना का प्रथम पेज वहां से शुरू करते हैं, यानी जहाँ 7 नंबर है, नंबर नहीं डाला है पृष्ठ पर, प्रस्तावना जहाँ लिखा है वहां से शुरू करते हैं हम। इस संस्करण में मुद्रित कसाय पाहुड़ा और उसकी चूर्णी सूत्र रूप वृत्ति तथा उन दोनों की टीका जयधवला के संबंध में तथा उनके रचयिताओं के संबंध में प्रथम भाग की प्रस्तावना में विस्तार से विचार किया गया है। वहां तो बहुत डिटेल है, हमने पढ़ा भी था, अतः यहां केवल इस भाग के विषय का और उसमें आई हुई कुछ उल्लेखनीय बातों का परिचय दिया जाता है। सबसे प्रथम उल्लेखनीय बातों का परिचय कराया जाता है, मतभेदों का खुलासा। इस भाग के प्रारंभ में ही कषाय पाहुड़ की 22वीं गाथा आती है, क्योंकि 21वीं गाथा तक तो प्रथम भाग था, पहली पुस्तक, और यहाँ 22 नंबर की गाथा से शुरू हो जाता है। प्रथम भाग की प्रस्तावना पृष्ठ 17 आदि में यह बतलाया है कि चूर्णी सूत्रकार ने जो अधिकार निर्धारित किए हैं वे कषाय पाहुड़ में निर्दिष्ट अधिकारों से कुछ भिन्न है। हमने वहाँ वो टेबल भी देखे थे, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पद्धति से अर्थाधिकारों का विभाजन किया है। सो इस 22वीं गाथा का व्याख्यान करते हुए श्री वीरसेन स्वामी ने गुणधराचार्य के अभिप्रायानुसार अधिकार बतलाए हैं, और आगे पृष्ठ 17 में आचार्य यतिषभ ने उक्त गाथा का व्याख्यान चूर्णी सूत्रों के द्वारा करते हुए अपने माने हुए अर्थाधिकारों को दिखलाया है। यानी यहाँ वीरसेन स्वामी ने तो मूल गुणधर भट्टारक ने जो अर्थाधिकारों की रचना की थी उसको बताया है। इसी से 22वीं गाथा इस भाग में दो बार आई है, क्योंकि चूर्णी सूत्रकार ने भी फिर उसको लिखा है, इसलिए वहां फिर दोबारा आएगी। यति ऋषभाचार्य ने उस गाथा से 6 अर्थाधिकार सूचित किए हैं, जबकि गुणधराचार्य के अभिप्रायानुसार उससे 2 ही अर्थाधिकार सूचित होते हैं। इससे भी हमने वो टेबल इसके विस्तार से देखे थे पहले भाग के प्रस्तावना में, क्योंकि गुणधराचार्य ने प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति को मिलाकर एक अर्थाधिकार लिया है, और प्रदेश विभक्ति, झीणाझीण और स्थित्यंतिक को मिलाकर दूसरा अधिकार लिया है, जबकि आचार्य यति ऋषभ ने इन 6 को अलग अलग अधिकार माना है। इसी से श्री वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि अपने माने हुए अधिकारों के अनुसार चूर्णी सूत्रों का कथन करने पर भी आचार्य यति ऋषभ गुणधराचार्य के प्रतिकूल नहीं है। अर्थाधिकारों का विभाजन अलग होगा तो भी विषय तो सब एक ही है, क्योंकि उन्होंने 2 अधिकारों को ही 6 अधिकारों में विस्तृत कर लिया है, उसके केवल उपभेद कर दिए उन्होंने और उसके भेद प्रभेद कर दिए, अतः उन्होंने उन्हीं विषयों का कथन किया है जिनका समावेश उक्त 2 अधिकारों में गुणधराचार्य ने किया था। जैसे गुणधराचार्य यति ऋषभ आचार्य के अभिप्राय अनुसार कषाय पाहुड़ के अधिकारों में भेद है, वैसे ही यति ऋषभाचार्य और उच्चारणाचार्य में भी अवांतर अधिकारों को लेकर भेद है, जो उसके प्रभेद होते हैं सब डिविजन्स, वो कहाँ किसकी डिवीजन की इसमें भेद है। उच्चारणाचार्य ने मूल प्रकृति विभक्ति के 17 अधिकार कहे हैं, जबकि यति वृषभाचार्य ने 8 ही अधिकार कहे हैं। इसी तरह उच्चारणाचार्य ने एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति के 24 अधिकार बतलाए हैं, जबकि यति वृषभाचार्य ने 11 ही अधिकार बतलाए हैं। किंतु इसमें भी परस्पर में प्रतिकूलता नहीं है, क्योंकि आचार्य यति वृषभ ने संक्षेप से कथन किया है, जबकि उच्चारणाचार्य ने विस्तार से कथन किया है। अतः आचार्य यति वृषभ ने अनेक अनुयोग द्वारों का एक में ही संग्रह कर लिया है और उच्चारणाचार्य ने उन्हें अलग अलग कहा है। जैसे गुणधर भट्टारक ने कहा, उसमें इन्होंने 2 अधिकारों के इन्होंने 6 बनाए, और इन्होंने जितने बनाए हैं आगे जो 11 अधिकार, उसमें से उच्चारणाचार्य ने 24 अधिकार बनाए। चूर्णी सूत्रों की प्राचीनता। पृष्ठ 211 पर एक चूर्णी सूत्र आया है, पृष्ठ 210 पर एक चूर्णी सूत्र आया है, 21 से विहत्तियों को हो दी, अर्थात एक प्राकृतिक स्थान का स्वामी कौन होता है। जयधवला में इस पर प्रश्न किया है, यह सूत्र क्यों कहा गया, तो उत्तर दिया है कि शास्त्र की प्रामाणिकता बतलाने के लिए। फिर प्रश्न किया है कि ऐसा पूछने से प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है, तो वीरसेन स्वामी ने इसका यह उत्तर दिया, यह भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था, उसका यहाँ निर्देश करने से चूर्णी सूत्र की प्रामाणिकता का ज्ञान होता है। तथा इससे आचार्य यति वृषभ ने यह भी सूचित किया है कि यह उनकी अपनी उपज नहीं है, यानी उन्होंने अपने से कुछ नहीं लिखा है, किंतु गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जो प्रश्न किए थे और उन्हें उनका जो उत्तर प्राप्त हुआ था, उन्हें ही उन्होंने निबद्ध किया है। निबद्ध वह हुआ, निबद्ध किया है, द को ध लगाना। इससे प्रतीत होता है कि चूर्णी सूत्रों का आधार अति प्राचीन है और भगवान महावीर की वाणी से उनका निकट संबंध है। आगे, मनुष्य शब्द से किसका ग्रहण। पृष्ठ 211 पर चूर्णी सूत्र में कहा है, नियम से क्षपक मनुष्य और मनुष्यनी ही एक प्राकृतिक स्थान का स्वामी होता है। श्री वीरसेन स्वामी ने इसका अर्थ करते हुए कहा है, मनुष्य शब्द से पुरुष वेद और नपुसक वेद से विशिष्ट मनुष्यों का ग्रहण करना चाहिए। यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जाएगा तो नपुसक वेद वाले मनुष्यों में एक विभक्ति का अभाव हो जाएगा, यानी वो तो भाव वेद की बात यहाँ चल रही है, किसका उदय है, कौन से वेद के उदय से ही श्रेणी चढ़ रहा है उसकी अपेक्षा है। इससे स्पष्ट है कि आगम ग्रंथों में मनुष्य शब्द का उक्त अर्थ ही लिया गया है। यही वजह है कि गोमट सार जीवकांड में गति मार्गणा में नपुसक वेदी मनुष्यों की संख्या अलग से नहीं बताई है और न मनुष्य के भेदों में अलग से उसका ग्रहण किया है। वहां भी मनुष्यनी ऐसा कहा है ना, एक तो सामान्य मनुष्य, फिर पर्याप्त मनुष्यनी, जब पर्याप्त कहेंगे तो तीनों वेद वाले हो जाएंगे, और मनुष्यों का फिर अलग से निकाला। इससे भाव वेद की विवक्षा भी स्पष्ट हो जाती है। आगे, कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि मरता है या नहीं। पृष्ठ 215 पर चूर्णी सूत्र का विवेचन करते हुए यह शंका उठाई गई है कि कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि के भी 22 प्राकृतिक स्थान पाया जाता है। ये कृतकृत्य वेदक किसको कहते हैं? हाँ, देवेंद्र भाई, हाँ, जो क्षायिक का प्रोसेस जिसने शुरू कर लिया है, और जिसने पहले तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, फिर मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है और सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय हो जाता है, तो सम्यक प्रकृति वो अंतर्मूर्त वाले रह जाते हैं, तब उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं, क्योंकि उसमें भी पहले स्थिति ज्यादा होती है, उसको भी कांडक घातों के द्वारा घटाते घटाते एक अंतर्मूर्त शेष रहती है, वहां मरण हो सकता है, इसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। तो ये प्रश्न ही उठाया कि होता है कि नहीं होता है मरण, तो कहते हैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि के भी शंका की थी कि उसके भी 22 प्राकृतिक स्थान पाया जाता है और वह मरकर चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है, अतः मनुष्य और मनुष्यनी ही 22 प्रकृतिक स्थान के स्वामी होते हैं, यह वचन घटित नहीं होता। इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि यति ऋषभाचार्य के 2 उपदेश इस विषय में हैं, अर्थात उनके मत से कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि मरता भी है और नहीं भी मरता। यहाँ पर जो चूर्णी सूत्र में मनुष्य और मनुष्यनी को ही 22 प्रकृतिक स्थान का स्वामी बतलाया है, सो दूसरे उपदेश के अनुसार बतलाया है, नहीं भी मरता वाला। किंतु उच्चारणाचार्य के उपदेशानुसार कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है ना, दोनों ही बात है, मरण नहीं होता ये नियम नहीं है, तो वो भी वो कहते मरण होता भी और नहीं भी होता, दोनों ही ओर से बताए। अतः उन्होंने चारों गतियों में 22 प्रकृतिक स्थान का सत्व स्वीकार किया है। फिर दूसरा एक पॉइंट 5 नंबर का, उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना होती है या नहीं। पृष्ठ 417 पर यह शंका की गई है, जो उपशम सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करता है उसके अल्पतर विभक्ति स्थान पाया जाता है। यह अल्पतर क्या होता है, पहले ज्यादा हो और बाद में कम होता है तो उसको अल्पतर कहते हैं। प्रस्तावना चल रही है अभी हमारे, यहाँ कोई विषय नहीं चल रहा है, पुस्तक आज शुरू होती है दूसरी, और उसकी प्रस्तावना में पुस्तक में जहाँ कोई पॉइंट्स के बात बताना चाहते हैं, जिन विषयों के संदर्भ में 2 मत पाए जाते हैं उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। प्रस्तावना का 8 नंबर का पृष्ठ चल रहा है। अतः उपशम समय दृष्टि के सेकंड है, अल्पतर विभक्ति स्थान का काल भी बतलाना चाहिए। इसका यह उत्तर दिया है कि उपशम समय दृष्टि के अनंतानुबंधी का अनंतानुबंधी की चाहिए विसंयोजना नहीं होती। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का अर्थ मालूम है मंजू बेन? हाँ, अनंतानुबंधी जो सत्ता में पड़े हुए सभी के सभी परमाणु वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और नोनकषाय रूप हो जाते हैं, उसको विसंयोजना कहते हैं। इस पर पुनः यह प्रश्न किया गया, इसमें क्या प्रमाण है कि उपशम समय दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती। तो उत्तर दिया गया है कि चूंकि उच्चारणाचार्य ने उपशम सम्यक दृष्टि के एक अवस्थित पद ही बतलाया है, अल्पतर पद नहीं बतलाया, यानी पहले ज्यादा है और बाद में कम हो ऐसा उपशम सम्यक के काल में नहीं बनता है। इसी से सिद्ध है कि उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती। इस पर फिर शंका की गई है, उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना मानने वाले आचार्य के वचन के साथ उक्त कथन का विरोध आता है, अतः इसे अप्रमाण क्यों न मान लिया जाए। तो उसका उत्तर है कि उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना का कथन करने वाला वचन सूत्र वचन नहीं है किंतु व्याख्यान वचन है। मूल सूत्र में जो बात आती है उसको सूत्र वचन कहा, और वो परंपरा से व्याख्यान चलाता है उसको व्याख्यान वचन कहा। सूत्र से व्याख्यान काटा जा सकता है परंतु व्याख्यान से व्याख्यान नहीं काटा जा सकता। यानी सूत्र ज्यादा प्रमाण है परंतु 2 अलग अलग व्याख्यान है तो उसमें एक व्याख्यान से दूसरे व्याख्यान को हम रूल आउट नहीं कर सकते, सूत्र से तो कर सकते हैं। अतः उपशम समय दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना न मानने वाला मत अप्रमाण नहीं है। फिर भी यहाँ दोनों ही मतों को मान्य करना चाहिए क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके आधार पर एक मत को प्रमाण और दूसरे को अप्रमाण ठहराया जा सके। ऐसा कोई साधन है नहीं, यहाँ कोई केवली श्रुत केवली है ही नहीं कि जिनको जाकर पूछ सकते हैं। इस शंका समाधान के बाद वीरसेन स्वामी ने लिखा है, यहाँ पर यही पक्ष प्रधान रूप से लेना चाहिए कि उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है क्योंकि परंपरा से यही उपदेश चला आता है। ऐसा ज्ञात होता है कि आचार्य यति ऋषभ का यही मत है क्योंकि उन्होंने जो 24 प्रकृतिक विभक्ति स्थान का उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर बतलाया है वह उपशम सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की विषय योजना माने बिना नहीं बनता, क्योंकि वेदक का काल है 66 सागर और फिर एक अंतर्मूर्त करके 132 सागर। यदि अनंतानुबंधी की विषय योजना पहले की है तो ही वो साधिक हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। यानी क्षोपशम के काल में न होते हुए उपशम के काल में हो सकती है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। अतः इस विषय में भी आचार्य यतिऋषभ और उच्चारणाचार्य में मतभेद है। अब इस पुस्तक के विषय परिचय बताते, पहले मतभेद कहाँ है यतिऋषभाचार्य उच्चारणाचार्य उसमें उसकी बात की। अब विषय परिचय, इस भाग में प्रकृति विभक्ति का वर्णन है। प्रारंभ में ही आचार्य यतिऋषभ ने विभक्ति शब्द का निक्षेप करके उसके अनेक अर्थों को बतलाया है। फिर लिखा है, यहाँ पर इन अनेक प्रकार की विभक्तियों में से द्रव्य विभक्ति के, ये जो निक्षेप होते हैं ना द्रव्य निक्षेप में, कर्म विभक्ति और नो कर्म विभक्ति, ये किसके भेद है? द्रव्य निक्षेप में दो मूल भेद कौन से द्रव्य निक्षेप के? आगम और नो आगम। नो आगम के तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी, तद्व्यतिरिक्त। और तद्व्यतिरिक्त के दो भेद, कर्म और नो कर्म, तो उनकी यहाँ चर्चा है। तो कर्म विभक्ति और नो कर्म विभक्ति, इन दो अवांतर भेदों में से कर्म विभक्ति नाम की द्रव्य विभक्ति से प्रयोजन है। यानी ये नो आगम द्रव्य निक्षेप है और उसमें भी कर्म वाला, जो तद व्यतिरिक्त कर्म विभक्ति वाला, कषाय प्रावृत में उसी का वर्णन है। इसके बाद कषाय प्रावृत की 22वीं गाथा का व्याख्यान करते हुए आचार्य यतिऋषभ ने उससे 6 अधिकारों का ग्रहण किया है। उनमें से सबसे प्रथम प्रकृति विभक्ति नामक अर्थाधिकार का कथन करने की प्रतिज्ञा की है। प्रकृति विभक्ति के दो भेद किए हैं, मूल प्रकृति विभक्ति और उत्तर प्रकृति विभक्ति। इस ग्रंथ में केवल मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियों का ही वर्णन है। अतः यहाँ मूल प्रकृति से मोहनीय कर्म और उत्तर प्रकृति से मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां ही ली गई है, क्योंकि यहाँ कषाय से प्रयोजन है इसलिए मोहनीय की ही यहाँ बात आई। मूल प्रकृति विभक्ति, मूल प्रकृति विभक्ति का वर्णन करने के लिए आचार्य यतिऋषभ ने 8 अनुयोग द्वार रखे हैं। स्वामित्व, काल, अंतर, ये हमने कल भी देखे थे ना, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर बता के फिर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, काल, अंतर, भागाभाग और अल्प बहुत्व। किसको नहीं लिया जो हमने कल देखा था पेज दोष विभक्ति में? पेज दोष विभक्ति में किसी को लिया था जो यहाँ क्षेत्र और स्पर्शन नहीं लिया है, यानी वहां द्रव्य प्रमाणानुगम भी लिया, सत प्ररूपणा द्रव्य प्रमाणानुगम, उसकी बात यहाँ नहीं ली। किंतु उच्चारणाचार्य ने 17 अनुयोग द्वारों के द्वारा मूल प्रकृति विभक्ति का वर्णन किया है। चूंकि चूर्णी सूत्र संक्षिप्त है और चूर्णी सूत्रकार ने केवल अत्यंत आवश्यक अनुयोगों का ही सामान्य वर्णन किया है, अतः जयधवलाकार ने सर्वत्र अनुयोग द्वारों का वर्णन उच्चारणावृत्ति के अनुसार ही किया है, क्योंकि उच्चारणावृत्ति में मंदबुद्धि भी समझ जाए इस तरह से अति विस्तार से समझाया है। और चूर्णी सूत्रकार ने सूत्रों में संक्षेप में वर्णन किया है। 17 अनुयोग द्वारों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तन यानी कथन करना है ऐसे बता देना। इसमें गुणस्थान और मार्गणाओं में मोहनीय कर्म का अस्तित्व और नास्तित्व बतलाया गया है। अस्तित्व बताना, ये हम सत प्ररूपणा कहते ना, वैसे यहाँ समुत्कीर्तना होती है। 11वें गुणस्थान तक सभी जीवों के मोहनीय कर्म की सत्ता पाई जाती है और 12वें गुणस्थान से लेकर सभी जीव उससे रहित है। अतः जिन मार्गणाओं में क्षीण, कषाय आदि गुणस्थान नहीं होते उनमें मोहनीय का अस्तित्व ही बतलाया है। यानी अस्तित्व कहाँ तक है? तो 11वें तक है। और कहाँ नहीं है, 12वें 13वें 14वें में नहीं है। और जिन मार्गणाओं में दोनों अवस्थाएं संभव है, उनमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनों बतलाए हैं। दोनों अवस्थाएं कुछ है और कुछ नहीं, ऐसे दोनों होगी ना मोहिनी? हाँ, अपगत वेदी। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये जो उसके जो अर्थाधिकार बताए हैं, इसमें बतलाया है कि मोहिनी विभक्ति किसके सादी है, किसके अनादि है, किसके ध्रुव है और किसके अध्रुव है। स्वामित्व, इसमें मोहिनी कर्म के स्वामी का निर्देश किया है। ये तो यहाँ तो विषय परिचय दिया जाता है, मूल बात तो अभी हम पढ़ेंगे क्रम से। स्वामी का निर्देश, जिसके मोहिनी कर्म की सत्ता वर्तमान है वह उसका स्वामी है, और जो मोहिनी कर्म की सत्ता को नष्ट कर चुका है वह उसका स्वामी नहीं है। काल, इसमें बतलाया है कि जीव के मोहिनी कर्म की सत्ता कितने काल तक रहती है और असत्ता कितने काल तक रहती है। किसी के मोहिनी की सत्ता अनादि से लेकर अनंत काल तक रहती है और किसी के अनादि शांत होती है। दोनों है ना, अनादि शांत, यानी अनादि से है ये बात सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि पहले कभी थी नहीं और बाद में हो गई और फिर नष्ट हुई। अंतर, इसमें यह बतलाया है मोहिनी कर्म की सत्ता एक बार नष्ट होकर पुनः कितने समय के बाद प्राप्त हो जाती है। परंतु पूरा मोहिनी, इन जनरल हम पूरे मोहिनी कर्म की बात करेंगे तो ऐसा होगा कि सत्ता नष्ट हो चुकी और फिर आ गए, ऐसा तो है। सत्ता की बात चल रही है, उपशम की बात नहीं हो रही है। हाँ, चूंकि मोहिनी का एक बार क्षय हो जाने के बाद पुनः बंध नहीं है होता, अतः मोहिनी का अंतरकाल नहीं होता। दर्शन मोहिनी का तो अंतरकाल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्षय होने के, क्योंकि सत्ता में से नष्ट होने के बाद की बात है। कोई भी जो है सत्ता में से जब नष्ट हो जाता है, अब जो हम अनंत अनुबंधी की विषय योजना करते हैं उसकी बात यहाँ नहीं लेना है, वो तो बारंबार होने वाला प्रोसेस है। भंग विचय अनुगम, जब भंग विचय कहते हैं तो अनेक जीवों की अपेक्षा यहाँ भंग बताए जाते हैं। इसमें नाना जीवों की अपेक्षा मोहिनी कर्म के अस्तित्व और नास्तित्व को लेकर भंगों का विचार किया गया है। हमने देखा ना, एक जीव में अनेक जीव में ऐसा जो घटित करते हैं, तो उसकी बात यहाँ बताएंगे। भागा भागानुगम, इसमें यह बतलाया है कि सब जीवों के कितने भाग जीव मोहिनी कर्म की सत्ता वाले हैं और कितने भाग जीव असत्ता वाले हैं। परिमाण यानी उसका प्रमाण, इसमें मोहिनी कर्म की सत्ता वाले और असत्ता वालों का परिमाण बतलाया गया है। क्षेत्र, इसमें मोहिनी कर्म की सत्ता वाले और असत्ता वाले जीवों का क्षेत्र बतलाया गया है कि वे कितने क्षेत्र में रहते हैं। स्पर्शन, इसमें उनका त्रिकाल विषयक बतलाया गया है। त्रिकाल विषयक क्षेत्र चाहिए ना? इसमें उनका त्रिकाल विषयक बतलाया गया है। स्पर्शन, क्षेत्र में वर्तमान लेते हैं और स्पर्शन में त्रिकाल विषय क्षेत्र बताते हैं। हाँ, भूत और वर्तमान और भविष्य में वही घटित होना है जो भूतकाल में, जो अतीत में हो चुका है वही भविष्य में होगा, उसका अलग कथन करने की जरूरत नहीं है। ये कल हमने उसमें पढ़ा था। काल, इसमें नाना जीवों की अपेक्षा मोहिनी कर्म के काल का कथन किया है, अर्थात यह बतलाया है मोहिनी कर्म की सत्ता वाले और असत्ता वाले जीव कब तक रहते हैं। चूंकि संसार में दोनों ही प्रकार के जीव सर्वदा पाए जाते हैं, अतः उनका काल सर्वदा बतलाया है। पहला काल का वर्णन एक जीव की अपेक्षा से है और यह नाना जीवों की अपेक्षा है। पहले बताया था ना हमने, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल और अंतर बताया, और यहाँ जो बता रहे वो नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था अनादि अनंत होगी किसी के सत्ता, और किसी के अनादि शांत होगी सत्ता की अपेक्षा। देखो स्पर्शन में लिखा है, उसमें उनका त्रिकाल विषयक बतलाया गया है, तो त्रिकाल विषयक क्षेत्र बतलाया गया, ऐसा होना चाहिए था ऐसा लगता है। अंतर, यह अंतर भी नाना जीवों की अपेक्षा से है, क्योंकि मोहनीय कर्म की सत्ता और असत्ता वाले जीव सदा पाए जाते हैं, तो सामान्य से उनमें अंतर नहीं है। यहाँ सत्ता की बात चल रही उदय की नहीं है, उदय की अपेक्षा हम उपशम सम्यक्ति को ले सकते हैं, उपशांत मोह को, उपशम सम्यक्ति के ना उपशम चारित्र वाले को, कि कर दिया और फिर बाद में उसकी सत्ता हो गई। यहाँ तो सत्ता की अपेक्षा बात चल रही उदय की नहीं। भाव, अब इसमें पांच भावों में से कौन कौन भाव है उसको बताएंगे, पता है ना। इसमें यह बतलाया है मोहनीय कर्म की सत्ता वालों के पांच भावों में से कौन कौन भाव होते हैं और असत्ता वालों के कौन भाव होते हैं, होता है। सत्ता वाले के परिणामिक के सिवा चार भाव होते हैं और असत्ता वाले के केवल एक क्षायिक भाव ही होता है, अल्प बहुत्व। इसमें मोहनी कर्म की सत्ता और असत्ता वालों में कमती बढ़तीपन बतलाया गया है कि कौन थोड़े हैं कौन बहुत है। यहाँ तो सत्ता की अपेक्षा ही बात है ना, मूल प्रकृति की बात चल रही है। उत्तर प्रकृतियों में फिर वो एकाद गई एकाद नहीं गई उसकी बात वहां हो जाएगी। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उक्त सभी अनुयोग द्वारों में गुणस्थान और मार्गणाओं की अपेक्षा वर्णन किया गया है तथा वह मोहनीय कर्म की सत्ता और असत्ता को लेकर ही किया गया है। न तो मोहनी के सिवा दूसरे किसी कर्म का इसमें वर्णन है और न सत्ता असत्ता के सिवा किसी दूसरी अवस्था के ही वर्णन है। यह उपशम आदि की बात नहीं है, केवल सत्ता है या सत्ता नहीं है इसी की चर्चा है, और वो भी मूल प्रकृति की है, उत्तर प्रकृतियों की नहीं है। इस वर्णन के साथ मूल प्रकृति विभक्ति का वर्णन समाप्त तो हो जाता है जो 59 पेजों में है। आगे उत्तर प्रकृति विभक्ति पूरा ही विषय ले लेते हम पढ़ के, क्योंकि घर में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, पुस्तकें सब यहीं रहने वाली है। हा? उत्तर प्रकृति के भेद, उत्तर प्रकृति विभक्ति के दो भेद हैं। एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति और प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति, क्या कहते हैं, एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति और प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति, इसमें क्या डिफरेंस है? और स्थान, स्थान में क्या समझना? स्थान में सत्ता के अपेक्षा, उदय की अपेक्षा भी स्थान हो सकता है, उदय की अपेक्षा भी स्थान होते हैं, बंद की अपेक्षा भी स्थान होते हैं और सत्ता की अपेक्षा भी स्थान होते हैं, सत्ता की अपेक्षा भी स्थान हो सकते हैं। देखो उत्तर प्रकृति वो तो बताए ना, एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का पृथक पृथक निरूपण किया गया है। एक एक प्रकृति की बात अलग अलग समझाई है। और प्रकृति स्थान उत्तर प्रकृति विभक्ति में मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतिक, 28 वाला मोहनीय के 28 प्रकृति सत्ता वाला जीव कौन होगा? अनादि नहीं हो सकता, अनादि तो 26 वाला होगा, सादी होना चाहिए, सादी मिथ्या दृष्टि हो या 11वें गुणस्थान तक भी हो, 28 की सत्ता वाला बताने सत्ता है ना सभी की, हाँ उसमें भी दो मत होते, 28 या 24 ऐसे, तो 28 प्रकृति, 27 प्रकृति वाला बोलो अश्विन भाई, मोहनी की 27 प्रकृति होनी चाहिए। हाँ बोलो देवेंद्र भाई, हेल्प करो, देवेंद्र भाई बताएंगे, नहीं बताना चाहते, उदय में नहीं है तो पर सत्ता है ना सब। मयंक भाई सत्ता की बात चल रही है, शायक होने वाला पहले चार की वो 23 वाला हो जाएगा, जरा सोचो कितने आसान है। नहीं उद्वेल ना करने वाला। देखो देखो, जो सादे सादे मिथ्या दृष्टि है, 28 की सत्ता वाला है, जब मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है तो क्या होता है, यानी मिथ्यात्व ही है ना, अभी सम्यक तो में से मिथ्यात्व में आया है, अंतर्मूर्त में कोई भी हो, हाँ, वेदक योग्य काल जिसको कहलाते हैं, तो उसके अंतर्मूर्त के बाद उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है, तो उद्वेलना करते करते अंत में जो पहुंचेगा, लास्ट में दोनों की उद्वेलना चल रही ना, अंत में क्या होता है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूर्ण हो चुकी, अभी एक अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व की भी होने वाली है पूर्ण, उस अवस्था में उसके सम्यक प्रकृति नष्ट हो गई है उद्वेलना होकर, तो 27 वाला है। 26 उसी ढंग से भी आएगा या अनादि भी वाले है, दोनों तय है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको मिथ्या तो प्रकृति का ही बंध है, वो दो तैयार ही नहीं हुई है, तो उसके भी 26 की सत्ता, अनादि मिथ्या दृष्टि की जो 26 की है, तो यहाँ देखो 28 प्रकृतिक, 27 प्रकृतिक, 26 प्रकृतिक, आदि 15 प्रकृतिक स्थानों का कथन किया है, यानी आदि में जरा समझ लेते ना, अभी हम पढ़ने के पहले 28, 27 और 26 देखें, 25 वाला कोई होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, 24 वाला अनंत अनुबंधी की विषय योजना करने वाला, 23 वाला अनंत अनुबंधी के बाद मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, 23 ये 22 वाला सम्यक मिथ्यात्व का भी कर दिया है, यानी वो अभी हम उसको कृतकृत्य वेदक भी कह सकते हैं, वो कितने वाला हुआ था, 22 वाला हुआ, और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ तो 21 की सत्ता वाला हो गया, फिर 8 के 8 का हो जाता है ना, 8 जाएगा सीधे, हाँ 8 जाते हैं ना, 8 इसमें, इसमें 9वें गुण स्थान में 8 का क्षय हो जाता है, तो 21 में से उदय की विच्छित्ति हुई उसकी सत्ता में उसके, तो हाँ 13 हो जाते हैं, उदय में आपने 17 की बात, तो वो उदय में हो जाती है, सत्ता की बात है, 13 में से ये 8 चले गए, और फिर वो 9 कषाय पुरुष वेद वेद वगैरह वो एक 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 चले जाएंगे आगे चल के, इस तरह से 15 अलग अलग स्थान हो गए, वो बात बताना चाहते, हाँ अलग अलग 15 स्थान, जैसे हमने देखे थे अभी 21 का देखा, फिर 13 का देखा, 12 का भी वेद पहले चले जाएंगे, 12 का एक होता है, 11 का एक होता है उसमें, हाँ, और फिर एक साथ वो 6 चले जाएंगे, अच्छा वो बढ़ के बता दिया, देखो देखो आगे 11 पेज पर नीचे से दूसरे पैराग्राफ में 28, 27, 26 हमने ये देखे थे, 24, 23, 22, 21 भी देखे थे, 21 के बाद 13 हो गए, 13, 12, 11 हो जाते हैं, हाँ वेद गए एक एक करके, हाँ फिर 5, 6 गए ना, हाँ फिर 4, 3, 2 और 1, यानी एक एक क्रोध मान माया लोभ वगैरह जाते हैं, और एक लोभ रह जाता है इस तरह से, अभी हम देखेंगे उसको बाद में, यहाँ हम पढ़ रहे थे 11 पुरुष पर नीचे का पैराग्राफ, उद्वेलना जब उसको कहते हैं कि जब सम्यक दृष्टि हुआ, वो उपशम सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व में से 3 प्रकृति हुई, जब वही जीव मिथ्यात्व में चला आता है तो उसके उल्टा संक्रमण होता है, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व दोनों ही मिथ्यात्व रूप से होने लगते हैं, उसको कहते हैं उद्वेलना होना, ये उद्वेलना का कार्य भी पल्ले के असंख्यात वर्षों तक चलेगा, क्योंकि दो प्रकृतियों की सत्ता जो है, स्थिति सत्ता में जो पड़ी है वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की है, मिथ्यात्व में जाने के बाद मिथ्यात्व का बंध तो अनेक सागरों का होगा, कोड़ा कोड़ी सागरों का, परंतु ये जो सम्यक्त्व के काल में जो बनी है वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर की जो प्रकृतियां पड़ी है उनकी उद्वेलना होने में पल्ले का असंख्यात्व भाग इतना काल लगता है, तो हमने देखा था उसके स्टार्टिंग में बहुत सारा काल जो है वेदक योग्य काल, उतने काल में फिर दोबारा उपशम नहीं होगा, परंतु अभी उद्वेलना का कार्य चल रहा है, फिर भी यहाँ जीव फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है वेदक सम्यक तो, फिर दोबारा उपशम करने के लिए वो जो सत्ता में पड़ी है उसकी दोनों प्रकृतियों की, वो सागर के आसपास उसकी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा नियम है। अब यहाँ हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, 10 नंबर पर। एक एक उत्तर प्रकृति विभक्ति का कथन 24 संयोग द्वारों की अपेक्षा किया गया है, यानी उसमें एक एक प्रकृति का अलग अलग वहाँ बताया था। इनमें 17 संयोग द्वार तो मूल प्रकृति विभक्ति वाले ही है, शेष है सर्व विभक्ति, 9 सर्व विभक्ति। अब इन सबका अर्थ वहाँ प्रकरण में ही आएगा। उत्कृष्ट विभक्ति, अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति, अजघन्य विभक्ति और सन्निकर्ष। मोनी की समस्त प्रकृतियों को सर्व विभक्ति और उससे कम को 9 सर्व विभक्ति कहते हैं। गुणस्थान मार्गणा मार्गणा गुणस्थान मार्गणाओं में कहाँ मोनी की सब प्रकृतियों का सत्व है और कहाँ उनसे कम प्रकृतियों का सत्व है, इसका निरूपण इन दोनों अनियोग द्वारों में किया गया है। सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियों को उत्कृष्ट विभक्ति और उनसे कम को अनुत्कृष्ट विभक्ति कहते हैं। मोटे तौर पर सर्व विभक्ति और नो सर्व विभक्ति में तथा उत्कृष्ट विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति में कोई भेद प्रतीत नहीं होता, तथापि यथार्थ में दोनों में अंतर है। सर्व विभक्ति में तो पृथक पृथक सब प्रकृतियों का कथन किया जाता है और उत्कृष्ट विभक्ति में समस्त प्रकृतियों का सामूहिक रूप से कथन किया जाता है। इसी तरह नो सर्व विभक्ति और अनुत्कृष्ट विभक्ति में भी जानना चाहिए। मोनी की सबसे कम प्रकृतियों का सत्व जघन्य विभक्ति है और उससे अधिक का सत्व अजघन्य विभक्ति है। एक प्रकृति के अस्तित्व में अन्य प्रकृतियों के अस्तित्व और नास्तित्व का विचार सन्निकर्ष अनियोग द्वार में किया जाता है। एक साथ कितनी होती है उसको सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे जो जीव मिथ्यात्व की सत्ता वाला है उसके सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 कषायों की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती। किंतु शेष 12 और 9 कषायों की सत्ता अवश्य होती है। ये तीनों को एक साथ वाला नहीं लेना है। मिथ्यात्व है और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। और मिथ्यात्व है सत्ता में और अनंतानुबंधी नहीं है जो नहीं, उदय की बात नहीं, विसंयोजना करने वाला सासाधन की बात नहीं है, विसंयोजना करने वाला। इसकी सत्ता में से अनंतानुबंधी निकल गया, परंतु बाकी 12 जहाँ मिथ्यात्व है वहां अन्य की तो होगी ही होगी। जिसके सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता है उसके मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 की सत्ता होती भी है और नहीं भी होती। ये नहीं भी होती कब है? कृतकृत्य वेदक शायक कहेंगे तो सम्यक प्रकृति की भी नहीं है। सम्यक प्रकृति है परंतु अनंतानुबंधी भी नहीं, मिथ्यात्व भी नहीं और सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं, क्योंकि सबका क्षय हो चुका है और अभी सम्यक प्रकृति का क्षय होने जा रहा है, अंतर्मूर्त में वो भी होगा। परंतु मोहिनी की शेष प्रकृतियों की सत्ता अवश्य होती है। इसी तरह शेष प्रकृतियों के बारे में विचार इस अनियोग द्वार में किया गया है। शेष 17 अनियोग द्वारों में जिन बातों का कथन किया है उसका निर्देश पहले किया ही है। अंतर केवल इतना ही है कि मूल प्रकृति विभक्ति में मूल प्रकृति मोहनीय कर्म को लेकर विचार किया गया है और उत्तर प्रकृति विभक्ति में मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियों को लेकर विचार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आचार्य यति ऋषभ ने अपने चूर्णी सूत्रों में उत्तर प्रकृति विभक्ति में अनियोग द्वारों का निर्देश तो किया है किंतु उनका कथन नहीं किया है। श्री वीरसेन स्वामी ने उसके सब अनियोग द्वारों का निरूपण उच्चारणावृत्ति के आधार से ही किया है। अभी प्रकृति स्थान विभक्ति, अभी हमने एक एक प्रकृति की बात देखी थी, 28 प्रकृतियों के एक एक की बात वहां बताई, प्रकृति स्थान अभी बताएंगे। उसका वर्णन करते हुए आचार्य ऋतिवृषभ ने सबसे प्रथम मोहनीय के स्थानों को गिनाया है, फिर प्रत्येक स्थान की प्रकृतियों को बतलाया है। यानी जैसे है ना, 28 का एक स्थान, 24 का एक स्थान, इसको कहते स्थानों को गिनाया है। ऐसे अलग अलग वेरिएशंस कितने हो सकते हैं अलग अलग स्थान की संख्या वाले, यानी 10 के हो गए, 10 के जो अभी हमने देखा, 13 के, 12 के, 11 के, ऐसे कौन से होते हैं? तो कहते हैं मोहनीय के सत्व स्थान 15 होते हैं। कौन कौन से अभी गिना है उन्हें? 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, फिर 8 का क्षय होता है तो 13, फिर 12, 11, फिर 5, 4, 3, 2 और 1। क्या कहते हैं? 13 का था ना, हाँ 13 का था, नपुसक वेद गया 12 का स्थान हुआ, स्त्री वेद गया 11 का हुआ, फिर नौ कषाय और हाँ 6 नौ कषाय पहले चले जाते हैं, तो फिर 5 का रह गया, तो एक वेद और 4 कषाय रह गए, पुरुष वेद और 4 कषाय, इसमें से वेद चला गया तो 4 रह गए, क्रोध चला गया तो 3 रह गए, मान चला गया तो 2 रह गए, माया चले गई तो 1 रह गया। पहले सत्व स्थान में मोहनी की सब प्रकृतियां होती है, दूसरे में सम्यक प्रकृति नहीं होती, ये उद्वेलना की अपेक्षा, तीसरे में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृतियां नहीं होती, ये अनादि वाला भी हो सकता है इसमें, या उद्वेलना वाला साधी मिथ्या दृष्टि। चौथे में ने कौन सा? 24 वाला, अनंत अनुबंधी 4 कषाय नहीं होती, क्योंकि वहां विसंयोजना की अपेक्षा लेना। पांचवे में 24 में से मिथ्यात्व भी चला जाता है, यानी 23 वाले स्थान में। 22 वाले स्थान में सम्यक मिथ्यात्व भी चला जाता है, फिर 21 वाला स्थान हुआ, सातवें में से 22 में से सम्यक प्रकृति भी चली जाती है, यानी क्षायिक समय दृष्टि हुआ तो 21 वाला स्थान हो जाएगा। आठवें में से आठवां कौन सा है? 13 वाला। 21 में से 8 कषायें चली जाती हैं, नवे गुण स्थान में 8 कषायों का क्षय होता है, वहां ये 13 वाला स्थान होता है। नौवे में ने नौवे स्थान में, ये नौवा स्थान 12 का है, नपुसक वेद भी चला जाता है, फिर 11 वाला स्थान जो है, बारहवें में से बारहवा स्थान जो बताए ना, 15 स्थानों में से बारहवा स्थान, स्त्री वेद भी चला जाता है, और फिर 11 के बाद वाला कौन सा? अभी 5 वाला, 5 प्रकृतियों का। 11वें में से 6 नौकषाएं भी चली जाती हैं, उसके बाद 5 का स्थान होगा, 4 का हाँ, पुरुष वेद भी चला जाता है, 12वें में से केवल 4 संज्वलन कषाय रह जाती हैं। अभी 13वा स्थान है 3 वाला, संज्वलन क्रोध चला जाता है, 14वें में संज्वलन मान चला जाता है, 15वां जो एक प्रकृति का स्थान है, संज्वलन माया के चले जाने से केवल एक संज्वलन लोभ शेष रह जाता है। ये स्थान कहाँ पर होगा? हाँ, 9वें के अंत में और 10वें में, दोनों में। एक वाला स्थान कहाँ पाया जाता है? हाँ, बादर है कि सूक्ष्म है, वो नहीं, वो एक प्रकृति वाला है, क्योंकि 9वें में उसने एक कर दिया ना, और फिर 10वें में तो उसका उदय सूक्ष्म का हो जाता है। इन 15 स्थानों का वर्णन गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में 17 अनुयोग द्वारों के द्वारा किया है। इनमें से आचार्य ऋतिवृषभ ने स्वामित्व, काल, अंतर, भंग विषय और अल्पभूतव का कथन ओघ से किया है, यानी सामान्य से उसकी बात बताई है। शेष कथन उच्चारणाचार्य की वृत्ति के अनुसार ही किया गया, यानी जो मार्गणाओं में जो भेद होते हैं विशेष, वो वहां बताए गए। अब भुजकार विभक्ति, भुजकार किसको कहना? तीन बातें आती है, भुजकार, अल्पतर और अवस्थित। भुजकार ने पहले कम थी और बाद में बढ़ गई, उसको भुजकार कहेंगे। अवस्थित ने उतना का उतना रहना, और अल्पतर ने घटना। मोनी के उक्त सत्व स्थानों का निरूपण करने के लिए तीन विभाग और भी किए गए हैं, वे है भुजकार, पदनिक्षेप और वृद्धि। भुजकार विभक्ति में बतलाया गया है उक्त सत्व स्थान सर्वथा स्थायी नहीं है। अधिक प्रकृतियों के सत्व से कम प्रकृतियों का सत्व हो सकता है और कम प्रकृतियों के सत्व से अधिक प्रकृतियों का भी सत्व हो सकता है या ज्यों का त्यों भी रह सकता है। अब हमने तो इसमें पढ़ा नहीं है तो ऐसा कब होता है कि कम सत्व था और अधिक हुआ? उदय की बात नहीं चल रही है, बोलो। मेरा पहले कम सत्ता में पहले कम थे और बाद में बढ़ गए, ऐसा कब होता है? बोलो देवेंद्र भाई। अरे पहले में पहले जब समय दृष्टि होता है 26 वाला स्थान से 28 वाला हो जाता है कि नहीं? फिर अनंतानुबंधी विषय योजना करने वाला 24 में से फिर वो बढ़ जाता है उसके भी। वो भी हो सकता है 24 में से 26 होगा कि 24 में से 28 होगा? हाँ अभी सही होने के लिए 24 हो गया। हाँ तो उसमें तो वो समय प्रकृति वो है ना। हाँ तो केवल वो हाँ चार और बढ़ जाएगा। चार कब बढ़ेंगे? मिथ्यात्व में जाने पर। हाँ अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, पहले अपना थोड़ा चलाएगी ना दिमाग। इस भुजकार विभक्ति का निरूपण भी 17 अनुयोग द्वारों के द्वारा किया है, यह नहीं बता रहे, जिनमें से काल अनुयोग का सामान्य से कथन यतिऋषभ आचार्य ने स्वयं किया है और शेष अनुयोग द्वारों का कथन उच्चारणा वृत्ति के आधार से किया गया है। पहले मोहिनी के 28 27 आदि विभक्ति स्थान बतलाएं, ये पद निक्षेप में। उनमें से अमुक स्थान से अमुक स्थान की प्राप्ति होने पर वह आनी रूप है या वृद्धि रूप है इत्यादि बातों का विचार पद निक्षेप नाम के विभाग में किया है। जैसे एक जीव 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला है, उसने सम्यक तो प्रकृति की उद्वेलना करके 27 प्रकृतियों की सत्ता को प्राप्त किया है तो यह जघन्य हानि कही जाएगी। जघन्य हानि का अर्थ क्या है? एक ही प्रकृति कम हुई, अनंतानंदी की विषय योजना करने वाला एट ए टाइम चार प्रकृतियों की हानि कर देता है। और कहां ज्यादा हानि देखी हमने? 11 से पांचवे में आए ना, 11 का स्थान में से पांचवे पांच के स्थान में आए, वहां भी हानि हुई ना। हाँ वो 8 की हानि हुई, 21 में से 13 हो गया इस तरह से। हाँ तथा एक जो 21 प्रकृतियों की सत्ता वाला है, उसने क्षपक श्रेणी पर चढ़कर 8 कषायों का क्षय करके 13 प्रकृतिक सत्व स्थान को प्राप्त किया तो उत्कृष्ट हानि कही जाएंगी। जघन्य यहाँ कहाँ उत्कृष्ट हानि कहाँ जघन्य हानि, उसको एक ही प्रकृति की सत्ता घट गई तो जघन्य हानि और 8 की सत्ता घट गई उत्कृष्ट हानि। बीच में अन्य भी विकल्प होंगे। इसी तरह सत्ता की ही बात है यहाँ पर, उदय की अपेक्षा बात यहाँ नहीं ले, उदय की बात यहाँ नहीं ले रहे। उदय के हमने वो कर्मकांड में देखे थे, उदय के कूट वगैरह देखे थे, मोहिनी के उदय कूट, उसमें तो एक एक ही गुणस्थान में अलग अलग पॉसिबिलिटीज थे ना, कहाँ भय का उदय है, कहाँ जुगुप्सा का है, कहाँ दो का है। हाँ चार चार पॉसिबिलिटीज देखी थी हमने एक एक गुणस्थान में। इसी तरह मोहिनी की सत्ता वाले किसी जीव ने उपशम सम्यक्त को प्राप्त करके 28 प्रकृतियों की सत्ता को प्राप्त किया तो यह जघन्य वृद्धि कहलाएगी। कितने प्रकृतियों की सत्ता वाला नहीं कहा, मोहिनी की 26 की सत्ता वाला चाहिए। और 24 विभक्ति स्थान वाले किसी जीव ने मिथ्यात्व में जाकर 28 प्रकृतियों की सत्ता प्राप्त की तो यह उत्कृष्ट वृद्धि कहलाएगी। इत्यादि बातों का विचार इस अधिकार में किया गया है। छब्बीस से 28 हो जाएगा। इस अधिकार के प्रारंभ में केवल एक चूर्णी सूत्र लिखकर आचार्य रति ऋषभ ने प्रकृति विभक्ति को समाप्त कर दिया है। हाँ, उच्चारणाचार्य ने समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्प बहुत्व इन तीन अनुयोग द्वारों से पदनिक्षेप का वर्णन किया है। पदनिक्षेप यानी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि आदि, उसी को लेकर स्वामी वीरसेन ने कथन किया है। अब वृद्धि विभक्ति। मौनी के उक्त सत्व स्थानों में से एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होते समय जो हानि वृद्धि अवस्थान होता है, यानी जितनी हुई ना, अब ये वृद्धि का या हानि का प्रमाण कितना है? पहले पदनिक्षेप में वृद्धि हुई अन्न हानि वृद्धि कितने की वृद्धि हुई वो बताया। अब मान लेते एक प्रकृति की वृद्धि हुई या चार की हुई या हानि हुई, तो वो कितने भाग प्रमाण हुई? यह तो संख्यात्वा भाग वगैरह कहेंगे ना, 28 का कितवा भाग, एक प्रकृति की हानि हुई 28 का वो 28वां भाग है, तो संख्यात्वा भाग ऐसा कहेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त होते समय जो हानि वृद्धि अवस्थान होता है वो उसके संख्यात्वे भाग है या संख्यात गुणा है इत्यादि विचार वृद्धि विभक्ति में किया है। इस अधिकार का कथन 13 अनियोग द्वारों से किया गया है। वृद्धि विभक्ति के पूर्ण होते के साथ ही प्रकृति विभक्ति समाप्त हो जाती है। अब अनियोगों की उपयोगिता। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में वस्तु तत्व को जानने के उपाय बतलाते हुए कहा है कि यों तो प्रमाण और नए से वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, किंतु उसमें वहां भी बताया ना कि सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व भी उपयोगी है। इनके द्वारा वस्तु का पूरा सांगोपांग ज्ञान हो जाता है, इन्हें परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे यदि हमें मोटर खरीदना है तो उसके बारे में हम निम्न बातें जानना चाहिए। आजकल बाजार में मोटर है या नहीं, ये सत प्ररूपण है। पहले अस्तित्व का कथन करेंगे। कितनी है, संख्या, कहाँ कहाँ है, क्षेत्र, हमेशा कहाँ से मिल सकती है, कब तक मिल सकती है, यदि बिक चुके तो फिर कितने दिन बाद मिल सकेगी, अंतर है, किस किस रूप रंग की है, भाव, किस किस्म की ज्यादा है और किस किस्म की कम, अल्प बहुत्व। इन बातों से हमें मोटरों के विषय में जैसे पूरी जानकारी हो जाती है, वैसे ही जैन सिद्धांत में जीव आदि तत्वों की जानकारी भी उक्त अनुयोग द्वारों से कराई गई है। चूंकि प्रकृत कषाय प्रावृत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय मौनीय कर्म का सत्व है, इनका विषय ही कौन सा है, सत्ता, मौनीय कर्म का सत्व, अतः इसमें उक्त कथन विविध अनुयोगों के द्वारा किया गया है, उनसे उसका सांगोपांग परिज्ञान हो जाता है और कोई भी बात छूट नहीं जाती। किंतु आज के क्या कहा, आज के समय में यह प्रश्न होता है कि एक मौनीय कर्म के इतने सांगोपांग ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ये क्या फायदा, क्या फायदा वाले तो फायदा गिनने के लिए कहीं और चले गए। मनुष्य जीवन में इसका उपयोग क्या है, ये करना नियोग की बातों की, जब जब बात आती है विषय निकलता है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसको जाने बिना नहीं हो सकता है, ये मनुष्य जीवन में इसका क्या उपयोग है? कभी ऐसा नहीं लगता कि इतना पैसा कमाना है मनुष्य जीवन के लिए, इसकी क्या आवश्यकता है? अच्छा, खाने पीने के लिए आवश्यकता है, पर इतने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कभी लगता है आपको? नहीं लगता है ना? वहां तो जितना ज्यादा हो उतना कैसे अंदर से गदगदी हो जाती है, गदगदी होती है, उल्लास आता है। जैन सिद्धांत का नाम जानने वाले भी इतना तो जानते ही है कि जैन धर्म आत्म धर्म है, वह प्रत्येक आत्मा के अभ्युत्थान का मार्ग बतलाते हैं। अभ्युत्थान यानी ऊंचा उठना, कल्याण करना, और आत्मा के अभ्युत्थान का सबसे बड़ा बाधक मौनीय कर्म है। बहा हुआ है वो बड़ा करना, बड़ा बाधक मौनीय कर्म है। अतः उस कर्म की कौन कौन प्रकृति कब कहां कर कैसी हालत में रहती है आदि बातों को जानना आवश्यक है। किंतु यह स्पष्ट है कि आत्मा के अभ्युत्थान के लिए इतना सांगोपांग ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, परंतु चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। ये बात, क्योंकि हम आत्मा की बातें भी समझते हैं परंतु चित्त को एकाग्र करके अपने स्वरूप में लीन नहीं होते। तो स्वाध्याय, जैसे हम व्रतों का निषेध करते हैं, व्रत से क्या होगा, सम्यक तो चाहिए, वैसे अकेले स्वाध्याय से भी नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता होना आवश्यक है। अब कहते हम तो कितने एकाग्र हो जाते, बच्चों में होते, टीवी में होते, और जब खाना खाते तो रसना इंद्रिय के विषय में भी हो जाते हैं। और चित्त की एकाग्रता के लिए कर्णान योग के ग्रंथों की स्वाध्याय जितनी उपयोगी है उतनी अन्य ग्रंथों की नहीं। कितना बात बताइए कि उसमें से उपयोग अपना कहीं हटता है ना, कितनी एकाग्रता होती है, उपयोग की सूक्ष्मता भी हो जाती है। क्योंकि कर्णान योग का चिंतन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता है तो उसमें कितना ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं है, यानी बाहर अन्य चीजों में की थे, क्योंकि उसके उसमें हम नहीं देखते हमारा डेढ़ घंटा कहाँ बीत गया पता नहीं, अरे समय हो गया ऐसा लगता है। अभी देवलाली में 6-6 घंटे अपना चलता था ना, 5 दिन तक लगातार लोग थे, ये क्या धो धो चल रहा है सर तो वहां भी कब घंटा समाप्त हो गया, 1 घंटा पूरा पता नहीं चलता था। हमें तो आदत है, परंतु जो नए लोग आए थे उनका भी यही कहना था, देखो 15-15 मिनट पहले ही वहां बैठ जाते थे लोग। स्वामी जी के समय की 3-4 महीना आई मेरे पास, और उन्होंने तो बताया कि कांजी स्वामी के बाद ये पहला ऐसा हुआ है कि जब श्रोता भी और वक्ता भी 15-15 मिनट पहले वहां आके बैठ गए, यानी उनके जमाने की सब थी वो। तो यानी इतनी हमें उस विषय के प्रति रुचि हो जाए, किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता नहीं होती वहां पर, वो विषय इतना हमें अंदर से रुचता है और उपयोग भी इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। हम यहाँ तो हम पढ़ते ही है, पर वहां तो सारे ही नए लोग थे, और कितने ही लोग ऐसा प्रश्न पूछ के क्या हमें समझ गए, समझेगा क्या, हमें समझेगा, आना तो चाहते पर बहुत डरते थे अंदर से। हमने सबको बोला कि डरना मत, बिल्कुल आना। ये अशोक भाई भी यहाँ धवला शुरू किया था ना, सबसे पहले पूछा था उन्होंने, मेरे को समझ में आएगा क्या, हो सकता है ऐसा धवला जैसा, क्योंकि नाम तो सुने उसमें क्या है पता नहीं ना। उन्होंने बोला बिल्कुल समझ में आएगा, अभी वो इतने समझे कि उन्होंने अपने बीवी को भी सब पूरा समझा दिया, सिखाया भी। तो यहाँ क्या कहते हैं, कर्णान योग का चिंतन करते करते यदि मन अभ्यस्त हो जाता है तो उसमें कितना ही समय लगाने पर भी मन उचटता नहीं है, और दुनिया की वासनाओं में जाने से रुक जाता है। दुनिया भी लिखा है, दुनिया की यानी अन्य वासनाएं उत्पन्न ही नहीं होती कहीं, अन्य बातों में मन जाता ही नहीं। इसी से विपाक विषय और संस्थान विषय को धर्म ध्यान का अंग बतलाया है। ये जो है ना, जब हम सुनते भी हैं और उसमें मन एकाग्र हो जाता है, यही विपाक विषय धर्म ध्यान है कर्मों के बारे में। और हमने यहाँ तो ये भूगोल का भी विषय चलाया था, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है अतः तो ये कर्णान योगों से क्या होता है, ज्ञान की विशुद्धि, ये विशुद्धता बढ़ती है, क्योंकि सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है और अपने ज्ञान की निर्मलता हो जाती है, बिल्कुल वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, मन की एकाग्रता और सद विचारों में कालक्षेप करने के लिए, कालक्षेप करने नहीं, काल बिताना, इतने काल तक हमारा क्या होता है, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है। इसी को अभिक्षण ज्ञानोपयोग भी कहा कर्णान योग के विषय में, जो बिल्कुल ज्ञान निर्मल हो जाता है। मन की एकाग्रता और सद्विचारों में कालक्षेपण करने के लिए ऐसे ग्रंथों की स्वाध्याय में मन लगाना चाहिए। देखो इतने स्पष्ट शब्दों में कितना लिख दिया उन्होंने, अच्छा वो ये प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। हर्ष की बात है कि उत्तर भारत के सहारनपुर, खतौली आदि नगरों में आज भी ऐसे स्वाध्याय प्रेमी सद्गृहस्थ है जो ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय में अपना कालक्षेप करते हैं। अभी हम बम्बई का नाम भी जोड़ देंगे ना, लोगों का आश्चर्य, हाँ सायन, अच्छा सायन तो बंबई जैसे ठिकाने में रोज के यानी द्रव्यान योग के स्वाध्याय में भी इकट्ठा एक जगह इतने नहीं अभी आजकल जम रहे, बड़े बड़े जहाँ चलते हैं स्वाध्याय वहां भी, और यहाँ करणान योग के में इतने ही आते हम शाम को, तो द्रव्यान योग में तो आते ही है, परंतु करणान योग का भी विषय कैसा है देखो। उनमें सहारनपुर के बा नेमीचंद्र जी वकील और बा रतनचंद जी मुख्तार, मुजफ्फरनगर के बा मित्र सेन जी, फतौल के लाला नानक चंद्र जी, सलावा के लाला हुकमचंद्र जी का नाम उल्लेखनीय है। बा मित्र सेन जी ने जयधवला के प्रथम भाग के स्वाध्याय करने के बाद कुछ शंकाएं जयधवला कार्यालय से पूछी थी, जिनका समाधान उनके पास भेज दिया गया था। लाला नानक चंद जी ने तो स्वाध्याय करते समय मूल से अनुवाद का मिलान तो किया ही, साथ ही साथ खतौली के श्री जिन मंदिर जी की जयधवला की लिखित प्रति से भी मूल का मिलान करके हमारे पास पाठांतरों की एक लंबी तालिका भेजी, किंतु उसमें कोई ऐसा पाठांतर नहीं मिला जो शुद्ध हो और अर्थ की दृष्टि से महत्व रखता हो। अधिकतर पाठांतर लेखकों के प्रमाद के ही सूचक है, इसी से उन्हें यहाँ नहीं दिया गया है। फिर भी उन्होंने मूल में दो स्थानों पर छूटे हुए पाठों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, उन्हें हम सधन्यवाद यहाँ देते हैं। पृष्ठ 98 पर पंक्ति 2 में नायरखेट आदि से पहले गाम पाठ होना और होना चाहिए, यानी ग्राम नगर और खेट ऐसा कहते ना, तो गाम नायर और खेट। पृष्ठ 110 पंक्ति 4 में कीर्तनम वा से पहले सरुवाणु शरणम पाठ जोड़ लेना चाहिए। 392 पंक्ति 3 में नाण जीवे ही के स्थान में नाना जीवे ही होना चाहिए। ये बात हो गई। अब शून्यों का खुलासा। जयधवला के प्रथम भाग के अंत में अनुयोग द्वारों के वर्णन में मूल में शून्य रखे हुए हैं। लाला नानक चंद्र जी ने इन शून्यों का अभिप्राय पूछा था। इस दूसरे भाग में तो चूंकि अनुयोग द्वारों का ही वर्णन है, अतः मूल में शून्यों की भरमार है। इन शून्यों के रखने का अभिप्राय यह है, बार बार उसी शब्द को पूरा न लिख कर उसके आगे शून्य रख दिया गया है। इससे लिखने में लाघव हो जाता है और उसके संकेत से पाठक छोड़ा गया पाठ भी हृदयंगम कर लेता है। जैसे कमय फिर शून्य लगाए ना, से कारमाण का योगी लिया गया है, सो पूरा कमय का योगी न लिख कर कमय शून्य लिख दिया गया है, ऐसे सर्वत्र समझ लेना चाहिए। अलम अति विस्तरेण, इति विस्तरेण किया है, अलमिति हुआ है, अलम अति, अलम अति विस्तरेण, अति विस्तार से बसो, यानी जो हमने शॉर्ट फॉर्म करते हैं और बाद में बिंदी लगा देते हैं ना, उसको यहाँ शून्य कहा। अब यहाँ से अपना विषय शुरू हो जाता है। ये तो प्रस्तावना पढ़ी हमने, ये अभी पयड़ी विहत्ति नाम द्विदियो अथाहियारो 22 नंबर की गाथा अभी हम पढ़ते हैं। पगदीये मोहनिच्छा विहत्ति तहट्ठि दिए अणुभागे उक्कसम अणुक्कसम जीणम अजीणम चठ्ठि दियम वा। मोनी कर्म की प्रकृति स्थिति और अनुभाग विभक्ति तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति जीना जीन और स्थित्यंतिक का कथन करना चाहिए। इनका स्वरूप वर्णन हमने पहले भाग में बहुत विस्तार से किया ही था। अब यहाँ फिर यहाँ बताते हैं, अब इस गाथा का अर्थ कहते हैं। ये गाथा किसने लिखी है? गुणधर आचार्य, गुणधर भट्टारक हम जिसको कहते हैं, जो कषाय प्रावृत जो मूल है। अब इसका गाथा का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। मोहनीय की प्रकृति में विभक्ति प्ररूपणा, मोहनीय की स्थिति में विभक्ति प्ररूपणा और मोहनीय के अनुभाग में विभक्ति प्ररूपणा करना चाहिए। यानी यहाँ जो प्रकृति स्थिति और अनुभाग तीनों में करना चाहिए। इस प्रकार यह गाथा के पूर्वार्ध का अर्थ है, यानी पहले लाइन का। इन तीनों अर्थों की अपेक्षा एक ही अर्थाधिकार है। गाथा में उपकसम अनुपकसम ऐसा कहा है, उससे प्रदेश विषयक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश विभक्ति के सिवा दूसरों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट संभव नहीं है। आशंका। यहाँ पर उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पद से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चारों को ही, चारों के ही उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का ग्रहण क्यों नहीं किया? तो अकेले प्रदेश में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्यों लगा रहे हैं? सब में लगाओ ना। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृति, स्थिति और अनुभाग का गाथा के पूर्वार्ध में ही कथन कर दिया है, इसलिए उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट पद से प्रदेश विषयक उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का ही ग्रहण समझना चाहिए। इस प्रकार गुणधर आचार्य ने उक्कसम अनुक्कसम इस पद के द्वारा मोहनीय कर्म विषयक प्रदेश विभक्ति का सूचन किया है। ऊपर तीन तो नाम लिए और यहाँ प्रदेश विभक्ति कहना चाहते थे। गाथा में जीर्णम अजीर्णम ऐसा कहने से प्रदेश विषयक जीर्णा जीर्ण का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रकृति आदि विषयक जीर्णा जीर्ण का ग्रहण संभव नहीं है। इस प्रकार गुणधर आचार्य ने जीर्णम अजीर्णम इस पद के द्वारा जीर्णाजीर्ण अधिकार का सूचन किया है। गाथा में ठिदियम ऐसा कहने से जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिगत प्रदेशों का ग्रहण किया है। वहां भी स्थिति किसकी? प्रदेशगत स्थिति का अर्थ है अलग अलग परमाणुओं में जो स्थिति पड़ी है उसकी बात है। इस पद के द्वारा गुणधर आचार्य ने स्थित्यंतिक अधिकार को सूचित किया है। इन तीन अर्थों को लेकर एक ही अर्थाधिकार होता है, क्योंकि इन तीनों के द्वारा प्रदेश विभक्ति का कथन किया गया है। यानी प्रदेश में ही पहले उन्होंने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बताया और उसी में ही जीनाजीन और उसी में स्थिति बताई, इसलिए इस अपेक्षा से वे तीनों एक है। ऊपर यह जो कुछ कहा गया है वह गुणधर भट्टारक द्वारा बतलाया हुआ अर्थ है। उनकी गाथा का अर्थ यहाँ पहले बताते हैं, फिर आगे चलकर ये स्वयं की बात और बताएंगे। विशेषार्थ, गुणधर भट्टारक ने कषाय पाहुड़ की 180 गाथाएं 15 अर्थाधिकारों में व्यवस्थित की है। यह तो गाहा सदे असी दे इत्यादि दूसरी गाथा से ही जाना जाता है। उन्होंने स्वयं बताया था कि मैं 180 गाथाओं की बात यहाँ बताऊंगा, तथा उन्होंने पेज्जम वा दोसम वा पयड़ीये मोहनिज्जा और कदी पयड़ीयो बंधदी ये तीन गाथाएं प्रारंभ के 5 अर्थाधिकारों में मानी हैं। यह कसाय पाहुड़ की पेज दोष विहत्ति इत्यादि तीसरी गाथा से जाना जाता है। पर इस तीसरी गाथा के अनुसार वीरसेन स्वामी जो 5 अधिकारों का विभाग कर आए हैं उससे इस पूर्वोक्त तो उल्लेख में फर्क पड़ता है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि वीरसेन स्वामी ने तीसरी गाथा के पूर्वार्ध की व्याख्या करते हुए जो 3 विकल्प संभव थे वे वहां बतलाए दिए, और पगदीय मोहनिज्जा इसकी व्याख्या करते हुए इससे जो चौथा विकल्प ध्वनित होता है उसका निर्देश यहां कर दिया है। गाथा के पूर्वार्ध में विभक्ति शब्द मुख्य है और शेष पद उसके विषय भाव से आए हैं। अतः इस पद से वीरसेन स्वामी ने यह अभिप्राय निकाला है कि गुणधर भट्टारक के मत से प्रकृति विभक्ति, स्थिति विभक्ति और अनुभाग विभक्ति इन तीनों का एक अधिकार हुआ, तथा गाथा के उत्तरार्ध में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश, जीणाजीण और स्थित्यंतिक इन तीनों के द्वारा एक प्रदेश विभक्ति का कथन किया गया है, अतः इन तीनों का एक अधिकार हुआ। यानी वो उन्होंने तो 2 अधिकार बनाए इसमें। इस प्रकार इस चौथे विकल्प के अनुसार एक पेज दोष विभक्ति, दूसरी प्रकृति स्थिति अनुभाग विभक्ति और तीसरी प्रदेश जीनाजीन और स्थित्यंतिक, चौथा बंद और 5वां संक्रम, ये 5 अधिकार होते हैं। ये हमने पहले पुस्तक में भी इसको विस्तार से पढ़ा था। उक्त 4 विकल्पों के अनुसार 5 अधिकारों का सूचक कोष्टक नीचे दिया जाता है। यानी किसने कहा कैसे कैसे, तो पहला पेज दोष विभक्ति, फिर दूसरा स्थिति विभक्ति, उसमें ही प्रकृति विभक्ति ली, तीसरा अनुभाग विभक्ति, उसके साथ प्रदेश विभक्ति, जीना जीना और स्थित्यंतिक, चौथा बंद और 5वां संक्रम। ये एक प्रकार से इसका विभाजन हुआ। दूसरे प्रकार से पेज दोष विभक्ति में प्रकृति विभक्ति ली और स्थिति विभक्ति को अलग निकाला, और तीसरा अनुभाग विभक्ति, उसी में प्रदेश जिनाजिन और स्थित्यंतिक को लिया, बंद और संक्रम को अलग रखा। चौथे प्रकार से जो विभाजन करते हैं, चौथा भी तीसरा विकल्प, पेज दोष विभक्ति में प्रकृति विभक्ति लिया, स्थिति विभक्ति अलग लिया, अनुभाग विभक्ति अकेला अलग निकाला, और प्रदेश विभक्ति जिनाजिन और स्थित्यंतिक का एक अधिकार बनाया, और ये बंध एक में लिया, उसी में बंध और संक्रम दोनों उसी में ले लिया। चौथा विकल्प है एक पेज दोष विभक्ति, दूसरे अधिकार में प्रकृति स्थिति और अनुभाग विभक्ति तीनों एक साथ लिए, तीसरे में प्रदेश विभक्ति जिनाजिन और स्थित्यंतिक लिए, चौथा बंध और पांचवा संक्रम। अब दो प्रकार, ये चार विकल्प वहां बताए, अर्थाधिकारों का विषय कैसे उन्होंने अलग अलग डिवाइड किया उसकी यहाँ चर्चा है। अब यतिवृषभ आचार्य के द्वारा कहे गए चूर्णी सूत्र का आश्रय लेकर विभक्ति का कथन करते हैं। यह भी सूत्र ऊपर बताया है चूर्णी सूत्र ने, जो चूर्णी सूत्रकार ने बताया ना यतिवृषभ आचार्य ने, ऊपर प्राकृत में विहत्ति ठिदि अनुभागे चत्ति अनुयोगत दारे विहत्ति निखिवेयवा नाम विहत्ति ठवण विहत्ति दव विहत्ति खेत विहत्ति काल विहत्ति गणन विहत्ति संठान विहत्ति भाव विहत्ति चेदि। विहत्ति ठिदि अनुभागे च इस वाक्य में आए हुए विभक्ति शब्द का निक्षेप करना चाहिए, ये निक्षेप लगा के उन्होंने बताए। वहां तो केवल विहत्ति ठिदि अनुभागे इतना ही गुणधर आचार्य ने सूत्र में कहा था, सूत्र में आई ना ये बात, पहले ही आया था, पगदीये मोहनिजा विहत्ति ठिदीये अनुभागे, उसी का यहाँ उन्होंने निक्षेप लगाकर बताया। क्या कहते हैं निक्षेप करना चाहिए, कैसे कैसे, यथा नाम विभक्ति स्थापना विभक्ति द्रव्य विभक्ति, स्थापना विभक्ति के बाद कॉमा लगाना है, काल विभक्ति गणना विभक्ति संस्थान विभक्ति और भाव विभक्ति। अब इस पर जय धौलाकार कहते हैं, यद्यपि ज्ञान अर्थ और शब्द ये समान नाम वाले होते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जैसे घट कहा हमने तो घट यह शब्द हुआ, तो घट नाम का कोई पदार्थ है कि नहीं है, वो अर्थ हुआ, और घट का जो ज्ञान हुआ उसको भी हम घट ज्ञान कहेंगे, घट का ज्ञान हुआ ना, तो वो ज्ञान को भी हम घट कहेंगे, पदार्थ को भी घट कहेंगे, और घट नाम का शब्द जिसको बताने वाला है, ऐसे ये ज्ञान अर्थ और शब्द तीन समान नाम वाले होते हैं। इस नियम के अनुसार विहत्ति ठिदि अनुभागे च यह वाक्य समुदाय तीनों का वाचक हो सकता है, ये ज्ञान का भी वाचक हो सकता है, अर्थ का भी और शब्द का भी। फिर भी इस वाक्य में जो इति शब्द आया है उससे जाना जाता है कि प्रकृत में यह शब्द समुदाय प्रत्यय और अर्थ का वाचक नहीं है, किंतु अपने स्वरूप में प्रवृत्त है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर विहत्ति ठिदि अनुभागे च इत्याकारक ज्ञान और इत्याकारक अर्थ का ग्रहण न करके विहत्ति ठिदि अनुभागे च इन शब्दों का ही ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान अर्थ और शब्द तीनों ही होते हैं, यहाँ केवल शब्दों का ही ग्रहण करना चाहिए। उक्त विभक्ति शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब ये विभक्ति क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको यहाँ कहेंगे। उनमें से अनवगत अर्थ के कथन द्वारा, अनवगत जो मालूम नहीं है उसके अर्थ के कथन द्वारा प्रकृत अर्थ का ज्ञान कराने के लिए उसका निक्षेप करते हैं। अन्य अन्य निक्षेप बताएं, फिर उसमें से कौन सा यहाँ लागू होता है उसकी चर्चा करेंगे। उक्त विभक्ति शब्द के वे अनेक अर्थ कौन कौन हैं? समाधान, ऊपर सूत्र में जो नाम से लेकर भाव तक विभक्ति के भेद बतलाए हैं वे सब विभक्ति शब्द के अर्थ हैं। उनमें से किसी एक अर्थ में विभक्ति शब्द का निक्षेप करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब वो अर्थ बताएंगे यहां। फिर सूत्र पढ़ते हैं कि अब आठों विभक्तियों के अर्थ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये चूर्णी सूत्र ऊपर पढ़ेंगे। नो आगम दो दव्य विहत्ति दुहिया कम्म विहत्ति चेव नो कम्म विहत्ति चेव। नो आगम की अपेक्षा द्रव्य विभक्ति दो प्रकार की है, कर्म नो आगम द्रव्य विभक्ति और नो कर्म नो आगम द्रव्य विभक्ति। बाकी का तो उन्होंने अर्थ नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने द्रव्य निक्षेप ही लगाया है, परंतु हम यहाँ सभी निक्षेप यहाँ लगा के दिखाएंगे। अभी उन्होंने बताया था ना कि उच्चारणाचार्य के अनुसार वे सभी निक्षेप लगा के बताएंगे। अब नाम विभक्ति और स्थापना विभक्ति का अर्थ कहते हैं। ये मूल में जो उन्होंने बताए हैं पहले ही सूत्र में, नाम विभक्ति स्थापना विभक्ति द्रव्य क्षेत्र काल गणना संसरण और भाव, उसमें से नाम विभक्ति और स्थापना विभक्ति का अर्थ यहाँ कहते हैं। जैसे हमने नाम रख दिया विभक्ति, वो नाम विभक्ति हो गई। जो विभक्ति शब्द अपने स्वरूप में प्रवृत्त है और बाह्यार्थ की अपेक्षा नहीं करता उसे नाम विभक्ति कहते। क्या कहते? अपने स्वरूप में प्रवृत्त है, वो नाम है बस, किसी अन्य को बताने वाला वो नाम नहीं है। जैसे हमने अपने बच्चे का नाम रख दिया विभक्ति, तो वो नाम हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं है विभक्ति की। अब स्थापना विभक्ति कह रहे हैं, विभक्ति की सद्भाव और असद्भाव रूप से स्थापना करना स्थापना विभक्ति है। हमने कोई भी किसी चीज में ये विभक्ति ऐसा कह दिया तो वो स्थापना विभक्ति हुई। उसमें सद्भाव और असद्भाव ने तदाकार और अतदाकार ऐसे दो भेद होते हैं। अभी द्रव्य निक्षेप जो है द्रव्य विभक्ति वो दो प्रकार की होती है। आगम और नो आगम के भेद से द्रव्य विभक्ति दो प्रकार की होती है। तो आगम द्रव्य विभक्ति किसको कहेंगे? हाँ, कौन से शास्त्र का विभक्ति? विभक्ति विषय जो आगम है उसको जानने वाला जीव, तो उसका उपयोग उसमें नहीं है। जो विभक्ति विषयक शास्त्र को जानता है परंतु उसमें उपयोग रहित है उसे आगम द्रव्य विभक्ति कहते। उपयोग रहित केवल कहेंगे तो उपयोग रहित जीव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हाँ उसमें उसका उपयोग नहीं है, ये आगम द्रव्य विभक्ति हो गई। और नो आगम द्रव्य विभक्ति किसको कहेंगे? वो तीन प्रकार की होती है। न्यायक शरीर नो आगम द्रव्य विभक्ति, भावी नो आगम द्रव्य विभक्ति और तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य विभक्ति। ज्ञायक शरीर ये जानने वाले जीव के शरीर को कहते हैं। वो शरीर हो सकता है वर्तमान काल का हो या गत भव का हो या आगामी हो। तो शरीर को यहाँ क्या कहा? नो आगम न्यायक शरीर, नो आगम द्रव्य विभक्ति। भावी किसको कहना? जो जीव अभी नहीं जान रहा है परंतु भविष्य में वो जानने वाला है उसको कहेंगे भावी नो आगम द्रव्य विभक्ति। और तद व्यतिरिक्त में दो भेद करेंगे, अभी यहाँ पढ़ेंगे। पहले उनमें से विभक्ति विषयक शास्त्र को जानने वाले जीव के भविष्यत वर्तमान और अतीतकालीन शरीर को न्यायक शरीर नो आगम द्रव्य विभक्ति कहते हैं। जो जीव आगामी काल में विभक्ति विषयक शास्त्र को जानेगा उसे भावी नो आगम द्रव्य विभक्ति कहते हैं। शंका, इन विभक्तियों का अर्थ यतिऋषभ आचार्य ने क्यों नहीं कहा? समाधान, इनका अर्थ सुगम है इसलिए नहीं कहा। हम भी बार बार ये निक्षेप लगा चुके हैं ना। ज्ञानावरणादि आठ कर्मों में जो मोहनीय कर्म है वह चूंकि प्रकृति भेद की अपेक्षा अन्य कर्मों से भिन्न है, अतः यहाँ कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य विभक्ति पद से उसका ग्रहण है। अथवा ज्ञानावरणादि आठ कर्मों को कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य विभक्ति कहते हैं। कहेंगे तो सबको, परंतु यहाँ केवल मोहनीय की ही बात यहाँ लेने, इस पुस्तक में मोहनीय की ही बात करेंगे, क्योंकि वो पेज और दोष में उसी का अधिकार आता है। तथा शेष द्रव्य नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य विभक्ति कहलाते हैं। अन्य जो द्रव्य है, कर्म को छोड़कर जो अन्य द्रव्य है, उनको नौ कर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य विभक्ति कहेंगे। यहाँ चूर्णी सूत्र में अंत में चैव शब्द आया है, उसे समुच्चयार्थक जानना चाहिए। यानी जो उन्होंने अन्य जो भेद निक्षेप नहीं लगाए थे, यहाँ लगा के दिखाए। ऊपर कम्म विहत्ति थप्पा, पहले तद व्यतिरिक्त नौ आगम के दो भेदों में जो कर्म विभक्ति नाम का पहला भेद कह आए हैं, उसका कथन स्थगित करते हैं। क्यों? उसी का कथन आगे चलने वाला है, उसको थप्पा करते, थप्पो करते हैं। गुजराती में थप्पो कहते हैं ना, हाँ किस लिए, यानी रुका देना उसको, क्या क्या किसके लिए, ओ भुजा, हाँ अच्छा पकड़े थप्पो करे, अच्छा वो थप्पो अलग है। थप्पा यानी उसको भी स्थगित कर देते हैं। क्यों स्थगित करेंगे? क्योंकि इसका विस्तार से कथन होने वाला है, इसलिए बाकी भेद पहले हम कहते हैं छोटी छोटी बातें पहले निपटा दो, फिर वो विस्तार से चलेगा। शंका, यह कर्म विभक्ति का कथन स्थगित क्यों किया है? समाधान, क्योंकि आगे चलकर कर्म विभक्ति का बहुत वर्णन करना है, अथवा कषाय प्रावृत में उसी का अधिकार है, अतः यहाँ उसका कथन स्थगित किया है। ये पूरा उसी का कथन चलने वाला है, तो यहाँ पर अभी जो बाकी भेद है उसको पहले बता देंगे। अब नौ कर्म विभक्ति का कथन करने के लिए आगे के सूत्र कहते हैं। ये किसका भेद चल रहा है अभी? तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य विभक्ति, उसमें से कर्म की बात बता चुके, अभी नौ कर्म की बता रहे हैं। अब ऊपर हमें सूत्र देखना है, तुल्य पदेशियम दौवम तुल्य पदेशियस्य दौवस्य अविहत्ति। तुल्य प्रदेश वाला एक द्रव्य तुल्य प्रदेश वाले दूसरे द्रव्य के साथ अविभक्ति है। तुल्य और समान ये दोनों शब्द समानार्थवाची है, तुल्य कहो या समान कहो एक ही बात है। अतः यह अर्थ हुआ, जिस द्रव्य के एक या अनेक प्रदेश समान होते हैं वह द्रव्य तुल्य प्रदेश वाला कहा जाता है। वह तुल्य प्रदेश वाला द्रव्य अन्य तुल्य प्रदेश वाले द्रव्य के साथ अविभक्ति अर्थात समान है। विभाग करने को विभक्ति कहते हैं और विभक्ति के अभाव को अविभक्ति कहते हैं। यहाँ जिसका अर्थ प्रदेशों की अपेक्षा समान होता है, अब और एक सूत्र, वेमाद पदेशियस्य विहत्ति, विवक्षित द्रव्य उससे असमान प्रदेश वाले द्रव्य के साथ विभक्ति है। जिसके द्वारा माप अर्थात गणना हो जाती है उसे मात्रा अर्थात संख्या कहते हैं। माद मियते अनया इति मात्रा, हम कहते हैं कितनी मात्रा में है, वो कितनी मात्रा में शब्द आता है ना, हिंदी में भी मात्रा शब्द आता है, यानी संख्या प्रमाण। तथा वी का अर्थ विसदृश है, अतः यह अर्थ हुआ, जिस द्रव्य में विमात्र अर्थात विसदृश संख्या वाले प्रदेश पाए जाते हैं उसे विमात्र प्रदेश वाला द्रव्य कहते हैं। विवक्षित द्रव्य विवक्षित द्रव्य ने एक द्रव्य के और दूसरे द्रव्य के प्रदेश समान नहीं है तो उसको हम विभक्ति कहेंगे, असमान कहेंगे। विवक्षित द्रव्य उस विमात्र प्रदेश वाले द्रव्य के साथ विभक्ति अर्थात असमान है। यहां यह असमानता प्रदेशों की अपेक्षा जानना चाहिए, सत्वादिक की अपेक्षा नहीं। सत्व की अपेक्षा कहेंगे तो क्या होगा, सभी सत स्वरूप है ना, तो सत्ता की अपेक्षा सभी द्रव्य है तो उसमें कोई असमानता नहीं होगी। तो असमानता किस अपेक्षा से हो सकती है, प्रदेशों की अपेक्षा से। तो किन कोई कौन कौन से द्रव्य अविभक्ति है और कौन कौन से विभक्ति है, विभक्ति आकाश भी लिया, हाँ धर्म, हाँ धर्म, अधर्म और जीव, ये तीन असंख्यात प्रदेशी है तो उसको हम समान कहेंगे, अविभक्ति कहेंगे। लोकाकाश में तो वो द्रव्य नहीं है ना, द्रव्य तो अखंड एक आकाश ही गिनेंगे हम। और फिर अगर हम पुद्गल परमाणु और कालाणु को भी अविभक्ति कहेंगे, और इनका आकाश के साथ हम विभक्ति कहेंगे क्योंकि वो अलग है और इनका अलग है। अब परमाणु और जीव के प्रदेश उनको भी हम कहेंगे अविभक्ति, असमानता है ना। देखो क्या कहते हैं, सत्वादिक की अपेक्षा नहीं, क्योंकि सत्वादिक की अपेक्षा सब द्रव्यों में समानता पाई जाती है। आगे का सूत्र, तदुभयेण अवत्तवम, विभक्ति द्रव्य और अविभक्ति द्रव्य इन दोनों की अपेक्षा अर्पित द्रव्य अवक्तव्य है। विभक्ति रूप और अविभक्ति रूप अर्थात समान और असमान द्रव्य की अपेक्षा वह अर्पित द्रव्य युगपत विभक्ति और अविभक्ति की विवक्षा होने के कारण अवक्तव्य है। अर्पित यानी जिसकी मुख्यता उसको अर्पित कहते हैं, और जिसकी नहीं उसको क्या कहते हैं, अनर्पित। कहाँ सुना है नाम, हाँ तत्वार सूत्र में। क्या क्या सूत्र है, सूत्र क्या है, हाँ अर्पित ये है ना, यहाँ अपना एनसाइक्लोपीडिया, अर्पिता अनर्पित सिद्धे है। तो अर्पित यानी मुख्य, वह अर्पित द्रव्य युगपत विभक्ति और अविभक्ति की विवक्षा होने के कारण अवक्तव्य है, क्योंकि हम एक साथ बता नहीं सकते ना। हम कहें कोई जीव द्रव्य वो विभक्ति है क्या अविभक्ति है, तो धर्म के साथ विभक्त अविभक्ति है और आकाश के साथ विभक्ति है, एक साथ बताओ, युगपत बताओ, नहीं बता सकते। अच्छा इसलिए अवक्तव्य कहें। तो अर्पित है नहीं वो मुख्य, जो जिसकी बात कर रहे विवक्षित उसको हम अर्पित कहेंगे। इतना वाक्य देखते हैं, अर्पित द्रव्य युगपत विभक्ति और अविभक्ति की विवक्षा होने के कारण, युगपत महत्व की बात है, अवक्तव्य है क्योंकि दोनों धर्मों से एक साथ संयुक्त हुए द्रव्य का प्रधान रूप से कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों ही धर्म है उसमें, किसी अन्य द्रव्य के साथ विभक्ति किसी के साथ अविभक्ति है, परंतु दोनों धर्म होते हुए भी कथन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए उसको अवक्तव्य कहा। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा भी।